तो आज आप हम सभी बाबा के नाइन जनवरी के मुरली से 9 जनवरी 1975 की मुरली से जो बाबा ने विशेष आलस अलबेलेपन को खत्म करने के लिए बातें कही उसके बारे में पढ़ेंगे सुनेंगे और उसको अभ्यास में लाएंगे। तो बाबा कहते हैं साकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या स्मृति लानी पड़ती है। बाबा ने पूछा कि साकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या स्मृति लानी पड़ती है। मैं जो हूँ जैसा हूँ उसको स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है? अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो, क्या यह अंतिम स्टेज है या बहुत समय के अभ्यासी ही अंत में इस स्टेज को प्राप्त कर पास विद ओनर बन सकेंगे? वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में यह संकल्प उठना कि अंत में विजयी बनेंगे व अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे, यह संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है अर्थात रॉयल माया है। यह संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता है। तो बाबा ने क्या कहा? तो पहले बाबा पूछते हैं कि साकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है या निराकारी स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है। तो हम सभी के सामने दो स्मृतियां हैं, कौन कौन सी? साकारी और निराकारी। जैसे कि ये दो संसार हैं, एक साकारी संसार दूसरा निराकारी संसार। तो जैसे साकारी संसार में देह के संसार में बहुत सारी बातें हैं, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, देह के वैभव, देह के स्वभाव संस्कार और देह की दुनियादारी और क्या क्या है, देह के क्रियाकलाप। तो ऐसे ही जो निराकारी स्वरूप है उसका संसार भी बहुत बड़ा है। उस संसार में कौन कौन सी बातें हैं? सब रूहानी है। उस रूहानी में क्या क्या है? रूहानी गुण है, रूहानी शक्तियां हैं, रूहानी कर्तव्य हैं, रूहानी यात्रा है,
आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है।
आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है, स्वस्वरूप, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण, स्वदेश, स्वधर्म, स्वकर्म, स्वमान, स्वभाव, स्वयं के संस्कार, स्वसेवा, स्वस्थिति। तो बाबा कहते हैं कि आप किस स्वरूप में रहते हो, साकारी या निराकारी स्वरूप में? या स्मृति लानी पड़ती है, मैं जो हूँ जैसा हूँ उसको स्मृति में लाने की क्या आवश्यकता है? बाबा पूछते हैं तो क्या जवाब देंगे? क्या आवश्यकता है? अभी इतना अभ्यास नहीं है। अब तक भी स्मृति स्वरूप नहीं बने हो, क्या यह अंतिम स्टेज है या बहुत समय के अभ्यासी ही अंत में इस स्टेज को प्राप्त कर पास विद ऑनर बन सकेंगे। वर्तमान समय पुरुषार्थियों के मन में यह संकल्प उठना कि अंत में विजयी बनेंगे, वह अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे, यह संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है। तो पुरुषार्थियों के मन में अंत समय के लिए क्या संकल्प उठते हैं? अंत में विजय बन जाएंगे और अंत में करेंगे, अंत में हो जाएगा, अंत में संपन्न बन ही जाएंगे। अभी टाइम पड़ा है, अभी तो हाँ बाद में कर लेंगे, जो भी कमी कमजोरी है उसको हम आने तक खत्म कर देंगे, अलबेलापन भी मिट जाएगा, आलस भी खत्म हो जाएगा। और अंत समय के लिए क्या क्या सोचते सभी? अंत समय आने तक हम ये सब कर लेंगे। हाँ जी,
अंत भला जब सबका भला।
हाँ, अंत भला तो सब भला, लेकिन उस समय के लिए अभी क्या क्या सोचते हैं कि उस समय तक कर लेंगे हम? अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बाद में कर लेंगे।
कौन संपूर्ण बन गया?
करना चाहिए लेकिन होता नहीं है।
हाँ, करना चाहिए लेकिन होता नहीं है। हाँ, कई सोचते हैं जो होगा वो देख लेंगे।
अभी संपूर्ण बन जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा।
हाँ, कई सोचते हैं कि अभी संपूर्ण बन जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो हम समय के जो नजारे हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं अंत में विजयी बनेंगे, वो अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे, यह संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है, अर्थात रॉयल माया है, ये भी एक माया है। यह संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है, यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता है। जो हम जीवन में सफलता चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि जो सोचते हैं जो बोलते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल कर्मों में हो या बाप समान बने, उसको उसमें सफलता प्राप्त नहीं होने देता। तो आगे बाबा कहते हैं विनाश की घड़ियों का इंतजार करने की बजाय तो स्वयं को अभी से संपन्न बनाने और बाप समान बनाने के इंतजाम में रहना चाहिए। परंतु इंतजार में ज्यादा रहते हो, प्रारब्ध भोगने वाले ही इस इंतजार में रहते हैं, तो अन्य आत्माएं जो साधारण प्रारब्ध पाने वाली हैं, उन तक भी सूक्ष्म संकल्प पहुंचाते हो। रिजल्ट में मेजॉरिटी आत्माएं यही शब्द बोलती हैं कि जब विनाश होगा तब देख लेंगे, जब प्रैक्टिकल प्रभाव देखेंगे तब हम भी पुरुषार्थ कर लेंगे, क्या होगा कैसे होगा यह किसको पता। यह वाइब्रेशंस निमित्त बनी हुई आत्माओं का औरों के प्रति भी कमजोर बनाने का व भाग्यहीन बनाने का कारण बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अंत काल के लिए अगर ऐसा सोचते हैं तो उसका कारण क्या है कि निमित्त बनी हुई आत्माएं जो हैं वो अलबेली हैं। तो बाबा कहते हैं विनाश की घड़ियों का इंतजार करने के बजाय कि उस समय हम कर लेंगे, बन जाएंगे, जो कमी कमजोरी है वो खत्म हो जाएगी, उसका सोचने के बजाय इंतजाम में रहना है, इंतजार नहीं करना है। तो क्या करना है हम सभी को? अभी इंतजार नहीं करना है, क्या करना है? इंतजाम करना है,
तदबीर
करनी है, तदबीर बनानी है। हाँ, तो वो समय आने से पहले हमें उस समय के लिए अभी से अपने आप को तैयार करना है, इंतजाम करना है। तो इंतजाम में क्या क्या करना है? रॉयल अलबेलापन को खत्म करना है, कमी कमजोरियों को खत्म करना है, संस्कारों को परिवर्तन करना है। पुरुषार्थ को तीव्र करने का इंतजाम करना है। कल किसने देखा? निराकारी आकारी परिस्थिति का अनुभव करना है, सबको समेटने का, सब कुछ व्यर्थ को समेटने का
जो करना है आज कर लोकाल किसने देखा है।
तो उसके लिए जो बाप से खजाना मिल रहा है उस खजाने से पहले स्वयं को भरपूर करने का इंतजाम करना है, स्वयं को चार्ज करने का इंतजाम करना है, जागृत कर रखने का इंतजाम करना है। और हाँ, दुनिया में कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब नहीं तो कब नहीं। सकाश देने का इंतजाम अभी से करना है, क्योंकि दुनिया की आत्माएं उस समय बहुत ही परेशान होंगी, दुखी होंगी, भयभीत होंगी, चिंतित होंगी। हाँ, क्योंकि उनको मालूम है कि आप भगवान से प्राप्ति कर रहे हो अभी। यदि आप अभी संपन्न नहीं बनेंगे तो उसमें वो आत्माएं आपको आपसे हिसाब लेंगी। हाँ, उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे, जो करना है वो अभी करना है।
जो हमें मिला अपने अनुभव द्वारा दूसरों को भी अनुभव भी बनाना है।
हाँ, जो हमें अभी भगवान से प्राप्ति हुई है उस प्राप्ति से दूसरों को भी अनुभव भी बनाना है। हाँ, उस समय कुछ भी करने का समय नहीं मिलेगा, जो मिला हुआ है वो ही या अपने प्रति यूज करना होगा या फिर संसार की अन्य आत्माओं को देने में सफल करना होगा। तो बाबा कहते हैं इंतजाम करो, इंतजार नहीं, विनाश की घड़ियों का इंतजार करने की बजाय तो स्वयं को अभी से संपन्न बनाने और बाप समान बनाने के इंतजाम में रहना है। परंतु इंतजार में ज्यादा रहते हो, प्रारब्ध भोगने वाले ही इस इंतजार में रहते हैं तो अन्य आत्माएं जो साधारण प्रारब्ध पाने वाले हैं उन तक भी सूक्ष्म संकल्प पहुंचाते हो। जो विशेष आधार मूर्त आत्माएं हैं निमित्त हैं, अगर उनमें ही ये संकल्प होंगे तो जो ठंडे पुरुषार्थी होंगे वो क्या करेंगे, वो और ठंडे हो जाएंगे, देखेंगे सोचेंगे देख लेंगे हो जाएगा। हाँ बाबा, कितना बाबा चिंता मत करो, हैं आप निश्चित रहो, हम बन जाएंगे, हाँ लास्ट में हो ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उन तक भी सूक्ष्म संकल्प पहुंचाते हो, रिजल्ट में मेजॉरिटी आत्माएं यही शब्द बोलती हैं कि जब विनाश होगा तब देख लेंगे, जब प्रैक्टिकल प्रभाव देखेंगे तब हम भी पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन जब वो समय आता है उस समय सबकी बुद्धि ब्लॉक हो जाती है, कुछ भी बुद्धि काम नहीं करती है, परिस्थितियां ऐसी आती जो उसमें समझ नहीं आता कि उसमें क्या करें। इसलिए बड़ी दादी जी हमेशा कहती थी कि 6 मास पहले से आपके पास स्टॉक होना चाहिए, 6 मास का स्टॉक पहले से ही हर चीज का, चाहे कोई बड़ी वस्तु है या फिर छोटी वस्तु है। तो बाबा कहते हैं जब प्रैक्टिकल प्रभाव देखेंगे तब हम भी पुरुषार्थ कर लेंगे, क्या होगा कैसे होगा यह किसको पता। यह संकल्प अलबेलापन है, यह वाइब्रेशंस निमित्त बनी हुई आत्माओं का औरों के प्रति भी कमजोर बनाने का व भाग्यहीन बनाने का कारण बन जाता है। तो दूसरी मुरली है 18 जनवरी 1975 की। तो बाबा इसमें कहते हैं हर वर्ष आते हो, कहते हो कि अभी करूंगा, वायदा करके जाते हो, अभी कब पूरा होगा, क्या कारण है, जो तुम सोचते हो और जो कर्म करते हो उसमें अंतर क्यों? सोचते हो फूल करने की बात और होती है आदि, इतना अंतर पड़ने का कारण क्या है? प्लान भी खूब सोच रचते हो, प्लान भी खूब रचते हो, उमंग भी खूब लाते हो और समझकर वायदा भी करते हो। सब बातें आएंगी ही, समझकर वायदा करते हैं कि सब बातें आएंगी फिर भी हम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल और समझ में अंतर आ जाता है, इसका कारण क्या है? संस्कारों की आहुति करके जाते हो, फिर सब कहाँ से आया? स्वाहा करके जाते हो, फिर क्यों आता है? देह अभिमान अनवेलापन वापिस क्यों लौट आता है? कारण क्या है? कारण है कि संकल्प करके जाते हो स्वाहा करने का, लेकिन संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो बाद में संभाल करते हो, परंतु इसमें जो संभाल चाहिए वह संभाल नहीं करते हो, नहीं रखते हो। समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए, आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो। तो बाबा क्या 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 कहते हैं कि हर वर्ष आते हो और आकर के कहते हो कि अभी करूंगा, हैं बाबा जो भी हमें काम देते हैं उसके लिए हम सभी क्या कहते हैं कि बस अभी करूंगा, आज से शुरू। लेकिन फिर क्या होता है? तो बाबा ने जैसे कहा कि जैसे बीज बोते हैं तो बोने के बाद फिर उसकी संभाल करते हैं, उसकी पूरी केयर करते हैं, उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, धूप देते हैं, उसको संभालते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से आप जो संकल्प करते हो उस संकल्प को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं कि हमने क्या संकल्प लिया था, वही आप नहीं तो करेंगे क्या। इसलिए जो बाबा ने संकल्प लिया हुआ है, जो बाबा ने हमें होमवर्क दिया उसको पूरा करने के लिए, उसको बार बार रिवाइज करना है। और अमृत वेला विशेष स्मृति में लाना है, दूसरों को भी सुनाना है कि क्या होमवर्क दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ चेकिंग भी करनी है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम उसमें कहाँ तक सफल हुए हैं, कहाँ तक आगे बढ़े हैं। एकांत में बैठकर अपने आप को चेक करना है कि हमने जो संकल्प लिया हुआ है वो संकल्प में सफलता नहीं मिली अब तक, उसका क्या कारण है। तो बाबा कहते हैं हर वर्ष आते हो और कहते हो कि अभी करूंगा, वायदा करके जाते हो, लेकिन वो वायदा पूरा कब होगा? तो उसका कारण क्या है कि जो संकल्प करते हैं उसको हम बार बार रिवाइज नहीं करते हैं, उस पर हम दृढ़ नहीं रहते हैं। तो बाबा ने कहा आप बीज डालकर अलबेले हो जाते हो, सोचते हो कि बाबा को दिया राव बाबा जाने, यह बाबा का काम है, कोई भी कमी कमजोरी है जिससे हम परेशान हैं, जो हमारे जीवन में पुरुषार्थ में विघ्न रूप है, बाधक है, वो हम संकल्प करते हैं कि आज से हमने जो बाबा को दे दिया, अभी फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने, हमारा काम पूरा हुआ। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, उसको बार बार रिवाइज करना है कि हमने किसको दिया, क्या दिया। हाँ जी, हाँ उसको भूलना नहीं है, बाबा को भी याद दिलाना है कि हमने आपको वो कमजोरी दी हुई है, हैं आपको याद है। तो बार बार उसको याद करना है, ऐसे नहीं कि आप बाबा को दिया तो बाबा जाने, ये बाबा का काम है, आप उसकी पालना नहीं करते हो। तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए, कोई भी कमी कमजोरी को खत्म करने के लिए मनसा और वाचा पर अटेंशन चाहिए। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए। बीज को रोज रोज पानी देना होता है, एक दिन नहीं डेली। तो हमें भी जो हमने संकल्प लिया है, वो संकल्प जो बीज रूप है, बीज के समान है, उसको भी रोज रोज पानी देना है। वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रिवाइज करना है, यहाँ पानी देने का मतलब है रिवाइज करना। उसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संकल्प, सॉरी, आराम पसंद के संस्कार नहीं मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए, चिंता जरूरी है, बिना चिंता के
हाँ दर्पण होना चाहिए,
खत्म करने की चिंता लगनी चाहिए।
और पानी देना वाला स्मृति देना
उसको। तो बाबा कहते हैं आराम पसंद के संस्कार नहीं मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए कि एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए। पुरुषार्थ की एक भी कमी का दाग बहुत बड़ा देखने में आता है, फिर हमेशा ख्याल आता है कि छोटा सा दाग मेरी वैल्यू कम कर देगा। अगर कोई भी कमजोरी है तो सभी को ख्याल तो आता है कि ये कमजोरी अगर खत्म नहीं हुई तो बड़ी हो सकती है और मेरे जो प्रलब्ध है, मेरी वैल्यू है, उसको कम कर देगा। तो बाबा ने कहा चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए, चिंतन भी कैसा होना चाहिए, चिंता के रूप में। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हमेशा वो लगन लगी रहे कि इसे खत्म करना है, मिटाना ही है, तभी मिटेगी, नहीं तो नहीं मिटेगी। जैसे दुनिया में कोई बड़ा फंक्शन करते हैं तो उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए उनको चिंता लग जाती है कि इसके लिए क्या क्या करें, कैसे करें, इसको संपन्न बनाना ही है। तो बाबा कहते हैं आपको भी चिंता लगनी चाहिए कि संसार संस्कार को कैसे मिटाएं। जैसे स्टूडेंट होते हैं तो उनको पढ़ाई की चिंता लगती है एग्जाम आने के समय, तो इसी प्रकार से आपको भी आपकी जो चिंतन है वो चिंता के रूप में होना चाहिए।
एक वर्ष फेल हो गए तो मुफ्त में हमारा चले गए।
तो बाबा कहते हैं चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए, वह नहीं तो अलबेलापन है। अगर चिंतन चिंता के रूप में नहीं है तो यह भी अलबेलापन है। कहते हो करते नहीं हो, जो पीछे की युक्ति है उसे प्रैक्टिकल में लाओ। जो बाबा ने पीछे युक्तियां बताई हुई हैं आज से पहले की, उनको प्रैक्टिकल में लाओ। आराम पसंदी देवता स्टेज के संस्कार हैं। अगर हम सब वर्तमान समय आराम पसंदी बनते हैं तो समझो हम देवता बन गए, लेकिन संगम युग ये है, ब्राह्मणों का युग है, देवता बनने का है, संस्कार लाने का है, प्रैक्टिकल में देवता बन के उसका एंजॉय करने का नहीं है। त्याग तपस्या का ये जीवन है। तो बाबा कहते हैं कि आराम पसंदी देवता स्टेज के संस्कार हैं, वह ज्यादा खींचता है। संगम युग के ब्राह्मण के संस्कार जो त्याग मूर्त के हैं वह कम इमर्ज होते हैं। त्याग बिना, याद रखना है कि त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता। अच्छा कर लेंगे, देखा जाएगा, यह आराम पसंदी के संस्कार हैं। जरूर करूंगा, यह ब्राह्मणपन के संस्कार हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, क्या करना है, आराम पसंद नहीं बनना है, क्या बनना है, हम सब वर्तमान समय ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का संस्कार कैसे होना चाहिए? त्याग तपस्या और सेवा। हाँ बजाए रिकॉर्ड बजा और रजाई से बाहर, तब रजाई मिलेगी। तो ब्राह्मण संस्कार हैं त्याग तपस्या और सेवा के, क्योंकि त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता है। जिसने जितना त्याग किया वो बहुत ना आगे बढ़ता है। हाँ त्याग करने के बाद खुशी आती है, त्याग करने के बाद बल मिलता है, शक्ति मिलती है। तो बाबा कहते हैं त्याग बिना भाग्य नहीं बनता है। हम सभी ने जो त्याग किया हुआ है उस त्याग का भाग्य ही हम सभी यहाँ पा रहे हैं। अगर त्याग नहीं किया होता तो यहाँ रहने का अवसर नहीं मिलता। तो त्याग का जो भाग्य है, इसी प्रकार से जो भी त्याग की बातें उनको हम त्यागेंगे तो हम कुछ पा सकेंगे, त्याग नहीं करेंगे तो प्राप्ति नहीं।
यज्ञ का शुरुआत फाउंडेशन में त्याग से ही शुरू हुआ है।
हाँ यज्ञ का शुरुआत भी त्याग से शुरू हुआ है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण पण के संस्कार हैं। लौकिक पढ़ाई में जिसको चिंता रहती है वह पास होता है, उसकी नींद फट जाती है। जो आराम पसंद हैं वे पास क्या होंगे? बाबा को भी उनके प्रति रहम आता है कि जो आराम पसंद होते हैं वो क्या पास होंगे। बाबा उनका एग्जांपल देकर के हम सभी को अलर्ट कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अभी सोचते हो कि प्रैक्टिकल करना है, चिंता लगनी चाहिए, शुभ चिंतन, संपूर्ण बनने की चिंता, कमजोरी को दूर करने की चिंता और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता। तो बाबा क्या कहते हैं कि आपके अंदर चिंता लगनी चाहिए। किस बात की? शुभ चिंतन करने की। चलते फिरते क्या करना है? शुभ चिंतन करना है, स्वचिंतन करना है, ज्ञान का चिंतन करना है, संपूर्ण बनने की चिंता कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कैसे बनना है, क्या करना है, उसके लिए चिंता चिंतन, कमजोरी को दूर करने की चिंता और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता। हाँ अगर हम यहाँ आलस अलबेलेपन में होंगे तो जो भक्त हमारे इंतजार में होंगे वो हमको याद कर रहे होंगे तो उनको भी क्या अनुभव होगा? वो भी वही करेंगे, वही पाएंगे ना, उनको भी वही अनुभव होगा। तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे भक्तों को भी वही अनुभव होगा। इसलिए हमें स्वयं को अलर्ट बनाना है, स्ट्रिक्ट बनाना है। तो अभी आगे की मुरली से है
बस, तो
कमजोरी को दूर करना, इसके लिए हमारा क्या चिंतन चल रहा है?
हाँ तो कमजोरी को दूर करने के लिए क्या करना है? बाबा ने हम सभी को कमजोरी को मिटाने के लिए क्या क्या युक्ति बताई हुई है? जो प्राप्तियाँ हुई हैं उनको सामने रखेंगे तो कमजोरियों को छोड़ने के लिए हमारे अटेंशन रहेगा, ध्यान रहेगा कि प्राप्ति कितनी बड़ी है। उस प्राप्ति को हम ध्यान रखेंगे तो कमजोरी को हम छोड़ने के लिए अलर्ट रहेंगे। हाँ तो कमजोरी है, उसका दूसरा कारण ये है कि हमारे पास ज्ञान का अभाव है, अभी पर्याप्त ज्ञान नहीं है। तो हमें उसके लिए अपने अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा को बढ़ाना है।
और
हाँ ज्ञान है लेकिन हम उसको यूज नहीं करते हैं, अलबेले रहते हैं, मालूम होते हुए भी हम उसको यूज नहीं करते हैं। और तीसरी बात है समय की जो पहचान है उसको हम भूल जाते हैं कि वर्तमान समय क्या चल रहा है। अगर कमजोरियों को नहीं मिटाया तो तो जो वर्तमान समय हम भगवान से प्राप्त कर सकते हैं वो उससे वंचित हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ पहली बात है कि हमारे में कमजोरी क्या है उसको समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे में कमजोरी जो है, अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो उसको नहीं मिटा सकेंगे। पहले समझेंगे तब उसको मिटाने के लिए हम कुछ कर सकेंगे।
जैसा शुरू में साकार बाबा ने शुरू में ईश्वर आत्मा ब्रजेंद्र आत्मा एक प्रैक्टिस किया बाबा,
हाँ
ऐसा हम प्रैक्टिस करके हमारे अंदर वो कमजोरियों को दूर कर सकते।
हाँ तो आपने तो हमें प्रैक्टिस करनी है स्वयं के जो गुण हैं शक्तियां हैं उनको बार 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 अभ्यास में लाने की। जितना हम उनको अभ्यास में लाएंगे उनके धारणा स्वरूप बनेंगे तो कमजोरियां स्वतः ही मिटती जाएंगी। जो श्रेष्ठ आत्मा है, हाँ जो विशेष आत्माएं हैं शक्तिशाली आत्माएं हैं, हाँ उनका संग करेंगे तो उनका संग के रंग से हमारी कमजोरियां मिटेंगे।
जो कमजोरी है ना उसका समझो गुस्सा करने की कमजोरी, शांति का दान देते।
हाँ जो हाँ एक विशेष युक्ति ये है कि हमारे में जो कमजोरी है बाबा कहते हैं जो आप में कमी है उसका दान दो, तो जो कमजोरी हमारे में है हम उसी कमजोरी के जो अगेंस्ट है जो विशेष खजाना है उसको जितना दान देंगे तो वो कमजोरी आहिस्ते आहिस्ते अपने आप खत्म हो जाएगी। किसी में क्रोध का संस्कार है, क्रोध की कमजोरी है, तो शांति का दान देंगे तो क्रोध आपका आस्ते आस्ते वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि दूसरी आत्माओं से भी आपको दुआएं मिलेंगी ना, तो वो दुआएं भी आपको बल देंगे और उससे वो कमजोरी खत्म हो जाएगी।
ये याद है कि समय बहुत कम है,
हाँ समय बहुत कम है, अगर अभी कमजोरी नहीं मिटाई तो कल्प कल्प के लिए वो दाग पड़ जाएगा।
समय के हिसाब से जो अभी प्राप्ति करनी है वो अभी तक नहीं,
हाँ अभी तक समय के हिसाब से जो प्राप्ति करनी चाहिए थे अभी तक प्राप्ति वो पूरी की नहीं, इसलिए उस पर ध्यान देना है, वो जरूरी है क्योंकि कल्प कल्प का ये भाग्य है, ये सारे कल्प में एक ही बार अवसर मिलता है, अगर ये अवसर हाथ से गया तो गया। हाँ हमें अपने कर्तव्य को याद रखेंगे, कर्तव्य याद रहेगा तो भी कमजोरी को मिटाना सहज हो जाएगा। और जो भी कार्य करें वो दृढ़ता पूर्वक करें, हाँ याद रखें कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अगर ये याद रखेंगे तो भी कमजोरी को मिटा सकेंगे। हाँ जी, हाँ दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। हाँ तो हमें वर्तमान समय याद रखना है कि हमारे वर्तमान समय हमें बहुत बड़ा कार्य करना है, 21 जन्मों के लिए कमाई भी करनी है और जो पिछला हिसाब किताब है आधे कल्प का उसको चुकतु भी करना है, तो जिसके पास इतना बड़ा काम है उसको कमजोरियों में समय देने का कहाँ फुर्सत नहीं है उसको। हाँ बाबा कहते हैं जो पास्ट की जो बीता हुआ कमजोरियाँ जो बीती हुई कमजोरियाँ हैं उनको पास्ट इज पास्ट उनको पास्ट करो और बाबा के पास रहो। हाँ याद रखना है कि जो कमजोर हैं उनकी अभी भी वैल्यू नहीं है और भविष्य में भी उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए कमजोरियों को मिटाना ही है। और जो कमजोर है उन आत्माओं को संग में नहीं रहना है क्योंकि संग का रंग लगता है। हाँ नंबर वन के संग में रहेंगे तो हम भी नंबर वन बन जाएंगे। जो स्टूडेंट फेल होता है उसके साथ में नहीं रहना है, अगर वो उसके साथ रहेंगे तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। अच्छा ओम शांति।